क्या पाते हैं? जैसे दधीची अपना शरीर दान कर दिया, हरिश्चंद्र और शिवी मुरध्वज और ये सब लोग हैं जो कि इस लोक में उसका फल नहीं है, तो उसको भोगने के लिए स्वर्ग लोक ले जाते हैं। ये लोग प्राय गृहस्थ होते हैं, सकाम लोग। और इससे ऊपर जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ और सन्यासी, अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो महजन तप सत्य ये चार लोकों में से किसी को प्राप्त करते हैं। और भोग समाप्त होने पर पुनः तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं खिन्ने पुण्ये मर्त्यं, वहां से फिर मर्त्यलोक में आ जाए। इन सब चीजों को समझने वाले हैं किंतु कम लोग हैं, समझाने पर भी नहीं समझते स्थूल बुद्धि की वजह से। इसलिए कर्मी लोगों को यह सब चीजें अधिक नहीं समझानी चाहिए, वो छोड़ नहीं सकेंगे, उल्टे बल्कि और विरोधी बन जाएंगे। एक दिन अस्पताल में, स्कूल में कोढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं, कोढ़ी को उपकार करने के लिए अस्पताल बना रहे हैं, किसी का अंग भंग हो गया उसके लिए ये लोग लाखों रुपया दान करते हैं, अपने जीवन का जो कुछ दान था ना वो सब उनके लिए कल्याण के लिए दान करते हैं। तो इसका फल क्या होगा? इसका फल स्वर्ग नहीं है। इसका फल क्या है? देखो, एक कोढ़ी है, एक पूर्व जन्म में जिसने मर्डर किया लोगों को, पाप किया, जघन्य व्यभिचार किए और दूसरों के हाथ पैर तोड़ दिए, तो इस जन्म में तुम कहाँ पैर टूटेगा कि नहीं, या जन्म से ही ऐसा होगा? वही लोग तो विकलांग हैं या कोढ़ी हैं और ये सब हैं, जो पूर्व जन्म में जो बुरे कर्म किए थे उसका फल भोगने के लिए ऐसा, तो उन लोगों की सेवा करने से क्या होगा? ये होगा ना, ये लोगों के समझ में नहीं आता। भगवान एक दंड दे रहे हैं और उस दंड में प्रभु कैसे दंड से संतुष्ट नहीं है, तो उनमें यही एक होगा जो प्रभु देखे अच्छा भाई ये जीव दुखी है इसके लिए ये कुछ कर रहा है, तो उनके लिए कुछ साधारण रूप में ही होगा। ये लोग भी यदि दूसरे जन्म में बीमार पड़ेंगे, यदि किसी तरह से पैर टूट गया, विकलांग हो गए, तो ये सब मिल करके उनकी सेवा करेंगे, तो अपने लिए विकलांग होने का रास्ता भी खोल दिया। इनके समझ में नहीं आता। एक आदमी ने खूब धन दान किया, तो इसका मतलब है तुमको जन्म लेना पड़ेगा, तुम भी धन उसका जो था जिसको दान किया है शुद्ध समय तुम फिर लेने के लिए जन्म लेगा, है कि नहीं ऐसा? तेतं भुक्त्वा, उसको भोगने के लिए फिर उनको आना पड़ेगा इस पृथ्वी लोक में। इसी तरह से ये सब जितने कर्म फल हैं, वैसा जो पुण्य का काम करने वाले सबको उसको भोग करने के लिए आना पड़ेगा। शिवी जी को मान लिया, शिवी मैंने जिन्होंने अपने कबूतर के लिए अपने, अच्छा उनके उनको फल क्या मिलेगा? भगवत भक्ति मिलेगी ना, क्या होगा? इस लोक में आएंगे वैसे ही उनके लिए फिर से होगा। ये कर्म मार्ग है, ये चक्कर में आना और जाना लगा रहे। भगवत भक्ति ऐसी है, निष्काम भगवत भक्ति, भगवान का प्रसाद दे दिया इसका कल्याण हो, इसका फल लेने के लिए नहीं आना पड़े, इसका फल हो जाएगा भक्ति। इस चीज को नहीं समझते लोग। एक हरिनाम किसी व्यक्ति ने किया, ये करोड़ों करोड़ों सत्कर्म मिलकर के एक हरिनाम का फल के पाषण के बराबर भी ये नहीं है, इन लोगों के समझ में नहीं।
अच्छा,
इससे ऊपर वाले कौन कौन कहाँ गए? महाजन तप और सत्य लोक में, जो जैसा कर्म किया है ब्रह्मचारी नष्ठिक रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तप लोक तक जा सकते हैं, और इससे ऊपर वाले जो होंगे वो ब्रह्मलोक तक जाएंगे, सत्य लोक तक जाएंगे। जो कि सनत सनंदन सनातन की कैटेगरी में होंगे वो कहाँ जाएंगे? वहां तक जाएंगे। ये लोग रहते हैं जन लोक से ऊपर तपलोक में जाते हैं, वहीं पर उनसे भेंट हुआ था गोप कुमार का सनक सनंदन सनातन से। कोई कोई योगी अर्चिरादि मार्ग के द्वारा क्रम से भोगते हुए जाकर के मुक्त होते हैं, और कोई कोई लोग एकदम चले जाते हैं डायरेक्ट मुक्त होते हैं। ये लोग ज्ञान परक होते हैं। ज्ञान परक, ज्ञान परक माने क्या? ये संसार में भोग है, तुच्छ है, इसे कोई सुख नहीं होगा, इसलिए इनको त्याग करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान माने जो ब्रह्म के साथ में सहयोग वो नहीं। जो भगवान के सकाम भक्त हैं वो अपनी इच्छा से सब सुखों को भोग करके इस लोक में ही, और फिर वो विशुद्ध होकर के भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। भगवत धाम भी कौन सा? इस लोक के अंतर्गत में भगवत धाम। और जो निष्काम भक्त हैं वे लोग डायरेक्ट वैकुंठ लोक में जाते हैं। इन भक्तों में से जो भक्त हैं, कोई ज्ञान मिश्रा, कोई शुद्ध भक्त, कोई प्रेमी भक्त, कोई प्रेम पर भक्त, और कोई प्रेमातुर भक्त, ये चार पन्ना पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच प्रकार के भक्त हैं। इसमें जो ज्ञान मिश्रा भक्त हैं ये लोग क्या है? वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। वैकुंठ के नाम नीचे ले रख लो, वो चार प्रकार की मुक्तियां हैं ना, हाँ, ये सारी जीवा को बात दे करके ये लोग उसमें जाएंगे। अच्छा, कोई शुद्ध, जैसे अम्बरीश महाराज जी को शुद्ध माना गया, कोई प्रेमी है, हनुमान जी प्रेमी हैं, कोई प्रेम पर हैं, प्रेम पर पांडव लोग, और कोई प्रेमातु,
प्रेम पर हनुमान, प्रेमी हनुमान, प्रेम पर पांडव, प्रेमातु
उद्धव इत्यादि। और इनसे ऊपर वाली कौन है? उनको जो इनकी श्रेणी में नहीं आए, ब्रज वाले भक्त। और ब्रज भक्तों में भी जो यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, श्री दाम सुबल इत्यादि महाभाव तक पहुंचने वाले जो सखा हैं, और इन सब से भी श्रेष्ठ जो गोपियां हैं, और इन गोपियों में जो श्रेष्ठ राधिका जी हैं और उनकी सखियां सब हैं। अब इस पर विचार करने में मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता। कह रहे हैं कौन? जैसे अच्छे, ये यदि जो शुद्ध भक्ति करते हैं, सकामा नहीं शुद्ध, वो तो वैकुंठ में गए। अच्छा, जो प्रेमी भक्त है वो कहाँ जाएंगे? वैकुंठ में। जो प्रेम पर है वो भी वैकुंठ में, प्रेमातुर है वो भी वैकुंठ में, और जो गोप गोपी है वो भी वैकुंठ में। कहते हैं ये मेरा मन नहीं मानता है, कोई न कोई तारतम्य होना चाहिए इनके भक्ति में, प्रेम में, कृष्ण की सेवा में तारतम्य है, इसलिए इनके धाम में भी जरूर तारतम्य होना चाहिए, इसलिए मेरा मन नहीं इसको मानता है। कि जहाँ पर हनुमान जी जा रहे हैं वहीं पर गोप गोपियाँ भी जाएंगी, यशोदा मैया जाएंगी, ये तो मेरा मन नहीं मानता, इसलिए आप बतलाइए गोपियाँ किस लोक में रहती हैं, किस धाम में रहती हैं और किस प्रकार से सेवा करती हैं, और प्रेम पर भक्त लोग कहाँ रहते हैं, प्रेमी लोग कहाँ रहते हैं, शुद्ध भक्त कहाँ रहते हैं, ज्ञान मिश्रा वाले कहाँ रहते हैं, अब विशेष करके गोपी लोग या उनके अनुगत्य में जो भजन करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, ये हमको बतलाइए। ये उनका प्रश्न था। अब इसी को सुन करके परीक्षित महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। साधारण लोग होता तो वो कहता जो मैं नहीं जानता, या बिगड़ जाता, प्रश्न का उत्तर नहीं देता। किंतु इन्होंने विचार करके बहुत प्रसन्नता लाभ की और ये बोलना आरंभ कर दिया। गोपियों की, गोपों की, ब्रजवासियों की उत्कृष्टता की यहाँ पर स्फूर्ति होने लगी, जो कैसे उन्नत लोग हैं। और तब उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, देखो तुमको इसको उपाख्यान के द्वारा बतलाएंगे, ऐसे नहीं समझे। सरल सहज कहानी के रूप में बतलाएंगे, आप लोग भी इसको कहानी के रूप में समझेंगे। ये सब तत्व साधारण लोगों के लिए नहीं, विशेष कुछ भक्ति संपन्न हैं उन लोगों के लिए है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। अभी एक नंगा आदमी, जैन समाज का दिगंबर कोई आ जाए, एकदम उलंग, यहाँ तक कि वहाँ पर नथनी पहना करके आया, नथ लगा लेते हैं, और समाज की समस्त स्त्रियाँ, बधुएँ, लड़कियाँ, लड़के सब उसकी फूल चंदन से पूजा करते हैं, उसको कितना आदर देते। और कोई हरिनाम करने वाला हो ना, नहीं पूछे। इसलिए समझने वाले समझेंगे इस चीज को। ये कृष्ण का जो एकांतिक आप लोग भजन करने जा रहे हैं, इसकी बड़ी महिमा है, किंतु ना तो हम ही लोग समझते हैं ना जगत के लोग, जो समझते हैं वो लोग समझते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, किंतु एक निष्ठा कृष्ण में है, वो कृष्ण के अतिरिक्त हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये निष्ठा साधारण रूप में नहीं आती है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो देवता देवी भगवान में और इसमें शंकर जी में, गणेश जी में, दुर्गा जी में क्या अंतर है, इनके समझ में नहीं आता। लाख वर्ष से सुनते सुनते जो कथा वाचन करते हैं उनकी नहीं समझ में आता है। वृंदावन में भागवत पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं और वो महाचंडी यज्ञ करते हैं। एक भागवत पर PhD किया और महाचंडी जी की वो आराधना करता है, उस मंदिर का पुजारी है तुम्हारा मित्र केशव, भागवत का पंडित आदमी है, बहुत वक्तृता देता है और भागवत स्पेशल, और इनके द्वारा वो भागवत में PhD किया, और माँ तारा या चंडी उसकी आराध्या देवी है। अभी सतयज्ञ क्या कर रहा है, जब ऐसे लोगों की और तिलक लगाता है, समझ में उनको नहीं आता है। ऐसे गुरु नहीं मिले, इसलिए सब गुरु के ऊपर में, निष्ठा के ऊपर में सब रहता है। वैष्णवों का संग ऐसा होता है, हमारे गुरुजी नहीं रहते ना, उनका संग मैं नहीं पाता, तो हमारे जैसे लाखों लोग इधर उधर में भटकते रहते, उनको ज्ञान नहीं होता, और हम लोग नहीं रहते तो आप लोगों को भी वैसे ही भटकना पड़ता, समझ में नहीं आता जी क्या करें। अभी इतना समझाने पर भी घर से देवता देवियों के प्रति भगवत बुद्धि नहीं गई। अभी आ रहा है समझ में कुछ ना, जे कर्म का क्या फल है, दान का क्या फल है, दान कहाँ जाना चाहिए, दान को बदल दो, दान मत दो, भगवान की सेवा करो। एक आदमी भगवान की सेवा कर रहा है और एक आदमी कोढ़ की और अपंग की सेवा कर रहा है, कुछ अंतर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। ये चीज को समझना ही एक बड़ी भारी उपलब्धि है। संसार के लोग सब जगह यही प्रचार, सब देशों में अपंगों की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। दरिद्रों को भोजन देना भगवान की सबसे बड़ी सेवा। अरे भाई, भगवान के ही तो जीव है, उसको भगवान का उच्च प्रसाद दे करके, महाप्रसाद उसको देंगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा, इस रूप में क्यों नहीं देता? तुम दान करने क्यों जाता है? नहीं, लोगों के समझ में आता। अब ये कथा सुना रहे हैं। आसाम एक देश है, भारतवर्ष का एक भाग है। भारतवर्ष में धार्मिक मामलों में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है आसाम को।
पिछड़ी जाती है आसाम में,
माने परमार्थिक दृष्टि से। क्यों? वहां पर नरकासुर का राज्य था, नरकासुर का राज्य।
अभी भी तंत्र मंत्र के प्राधान्य वहीं
है। अभी सुनते हैं वहां पर कोई आदमी जाएगा ना, सुंदर आदमी, तो उसको कबूतर बना लेंगे, भेड़ बना लेंगे, बकरे बना लेंगे। अभी है कमे छे ना,
नदी ऊपर आते हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर आते हो,
कम है। पहले ऐसा था, कबूतर बना करके अपने पास रख लेंगे।
अभी भी रखते हैं, उधर से कोई आना नहीं
देता। हां
बड़े तो हुआ, ये तो यूं ही चले आए
ना, ये तो वहीं के पास सुनते हैं। ये लोग तो इधर से थे, उधर में गए थे, वहां का आदिवासी लोग ऐसे थे। तो वो वहां पर एक कोई ब्राह्मण था, वो उसका जन्म इधर में नहीं हुआ था, इधर में हुआ था, तो इसमें तभी नहीं देखा, मूल में भी नहीं है, नहीं तो मूल में भी नहीं, नहीं मूल में भी नहीं है। देखो, पूर्व काल में कोई दरिद्री ब्राह्मण विप्रो निष्किंचन कश्चित पुरा ज्योतिष प्राग ज्योतिषपुरे वसन अज्ञात शास्त्रार्थो बहु द्रमिण काम मेरा। बस यहीं तक। तत्रत्य देवीं कामाख्यां श्रद्धानुदिनं भजन तस्या सकाशा तुष्टाया स्वप्ने मंत्रम दशार्थ। यहाँ पर तो नहीं है, कहीं और अधिक हो, दूसरी जगह है कहीं।
इसमें लिखा है प्राग ज्योतिषपुरवासी विप्रस्य वृत्तांत द्वारा श्री गोलोक महात्मा कथनम विप्रस्य कथाक्षर मंत्र लाभः।
हाँ, माथुपुर है,
प्राग ज्योतिषपुरवासी विप्र
बताया इसमें, ऐसा ही दिया। वो आसाम को, आसाम में रहने वाला था। वो संस्कृत इत्यादि का पढ़ा लिखा नहीं था, साधारण मनुष्य था। वो केवल अर्थ की इच्छा से कामाख्या देवी वहां पर है, उनकी पूजा करता था, उनकी आराधना करता था। अधिकांश लोग में कामाख्या की पूजा करने वाले बहुत से ऐसे हैं, अधिकांश लोग देवी को बलि चढ़ाते हैं, पशुओं की, पशुओं की बलि देते हैं, बड़े बड़े महिषों को, भैंसों को काट करके, कबूतर पाक ये सब हैं, बकरी है, भेड़, ये सब को, तो वो सब, किंतु ये नहीं करता था, तामसिक लोग करते हैं। तो वो पूजा करते करते कुछ दिनों के बाद में देवी जी उस पर प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न हो करके उसको कहा आकाशवाणी से, उसको एक मंत्र दिया, गोपाल मंत्र दशाक्षर। हम लोगों का है अष्ट दशाक्षर, और उनका है केवल दशाक्षर। बीज को बात दे करके अंतिम जो शब्द है वही दशाक्षर मंत्र, बीज को बात दे दीजिए, और बाकी जो है वो। यदि दशाक्षर में इतना बल है तो अष्ट दशाक्षर में कितना बल है। इसलिए खूब निष्ठा के साथ में इसका भजन करेंगे, इस मंत्र की उपासना करेंगे। तो वो इस मंत्र का जप करते 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 कुछ ही दिनों में खूब निष्ठा के साथ में करने लगा। जो देवी ने ऐसा कहा है, इसलिए विश्वास करके करने लगा। कुछ दिनों पर उसकी जो इच्छा थी धन की वो समाप्त हो गई अपने आप उस मंत्र के प्रभाव से। संसारिक द्रव्यों के प्रति जो कामना थी वो सब समाप्त हो गई। अब वहां से जब धन की कामना नहीं तो वहां क्यों रहे? देशाटन को चल रहा कि अच्छे कोई साधन और साध्य होना चाहिए, तो चलो मैं यहां पर तप नहीं होगा, हम चले जहां पर वहां से प्राप्त होगा। तो वो चलते चलते सुना वहीं से गंगा सागर एक बार, सप्तीर्थ बार बार, और गंगा सागर
एक बार,
सब तीर्थों में बार बार जाए और एक बार गंगा जी में, गंगा सागर में गोता लगा ले तो वो बराबर है। ये सुन करके साधारण लोगों से, और देखा जी हजारों हजारों लोग जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ में चल पड़ा, जी देखें जी वहां क्या है। वहां पर पहुंचा और वहां देखा जो यहां नहीं देखा था। यहाँ दान पुण्य करने वाले लोग नहीं थे, यहाँ पर बलि चढ़ाने वाले लोग और इस तरह के तामसिक लोग थे। और वहाँ पर देखा जो सब गृहस्थ लोग, साधु भी जा रहे हैं, सन्यासी भी जा रहे हैं, सब लोग, भक्त नहीं जा रहे हैं। साधारण कौन जा रहे हैं? कामना वासना वाले गृहस्थ लोग वहाँ जा रहे हैं। और इनके साथ में वहाँ पर ये भी पहुँचा और देखा जो वहाँ पर बड़ा दान हो रहा है। उस समय ठंडा का दिन होता है गंगा सागर, बस कंबल कंबल दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं और सब चीजों का दान दे रहे हैं, और लाखों लोग उसमें स्नान करते हैं। कुछ महिमा भी उस तीर्थ की है, वहीं पर कपिल देव जी का तपस्या का स्थल है। कहते हैं जब उनके तपस्या के बल से उस कुछ दिनों के लिए सागर हट जाता है, स्थान दे देता है, और जब वो मेला समाप्त हो जाता है फिर वो पानी भर जाता है। वहाँ देखा, देख करके इसकी इच्छा है मैं भी कुछ ऐसे ही दान करूँ। उनसे पूछा भाई दान करने ये किस लिए जो कर रहे हैं? तो ऐसा ही मिलता है, अभी जो करेंगे इसका लाभ ना मिलेगा। तो वो किंतु मंत्र छोड़ा नहीं एक दिन भी, क्योंकि दुर्गा जी ने कहा था। वहाँ पर कुछ ऐसे भी आए थे जो कि काशी और गया का भी महात्म्य जानते थे, तो उन लोगों से कुछ संग हुआ और उन्हें कहा जैसे भाई अब यहाँ से, वहाँ से भी उस मंत्र को जपने से उनमें उसकी विरक्ति आई और आगे चल पाए। यहाँ से वो गया और गया से गया में क्या किया? उस नदी में स्नान किया कर्मनाशा में, फल्गु नदी कर्मनाशा, और वहाँ पर विष्णु के पाद पद्म देखे, विष्णु का चरण वहां पर नहीं महासागर में, गंगा सागर में, और यहाँ पर विष्णु के चरण कमल देखे, उसकी परिक्रमा की, भक्तों का भी कुछ भाव आया वहाँ। उसने अपने कर्मों को छोड़ करके वहाँ नदी में स्नान करके, सीमा पर है कर्म नाशा, कर्मों का नाश करने वाली है, उसको नाश करके आगे काशी में गया। वहाँ देखा जे अहम ब्रह्मास्मि तत्तमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म इत्यादि मंत्र जप रहे हैं। बड़े बड़े सन्यासी लोग वहाँ पर हैं, सब लोग उनके पास में जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें प्रचुर आ रही हैं उन सन्यासियों के पास। खा करके एकदम लाल मोटे लंबे चौड़े हुए सब सन्यासी लोग हैं, और अनायास रूप में सभी आ जा रहे हैं। जो वहाँ पर काशी में जाते हैं उनको खिलाते और वो लोग दिन भर ब्रह्म की चर्चा करते हैं, सोहम सोहम इत्यादि। इसको इच्छा हुई मैं ही सोहम हो जाऊं तो बहुत अच्छा, और वेदांत की व्याख्या सुनने लगा, कहा हम भी अब वेदांत पढ़ेंगे, बस वेदांत के पढ़ने में लग गया। और सोहम करने की इच्छा होती किंतु गोपाल मंत्र छोड़ा नहीं। एक दिन गोपाल मंत्र करते 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 मंत्र के अधिष्ठात्री देवता मदन गोपाल ने उसको झांकी दर्शन दिए स्वप्न में,
काशी में
दर्शन देकर के, उनके रूप को देकर के ये मुग्ध हो गया। वाह कितना सुंदर रूप, हाथों में बंसी, बाल्य रूप में बहुत ही परम किशोर सुंदर, उनके रूप को देकर के मुग्ध हो गया। किंतु यही नहीं जाना कि हमारे मंत्र के अधिष्ठात्री देवता है, मंत्र जपना चाहिए इसलिए कर रहा है। मंत्र का न तो अर्थ जानता है, न जो बीज क्या है, न कृष्ण न गोविंद न गोपीजन वल्लभ कुछ भी नहीं जानता। गोपीजन वल्लभ क्या कहते हैं, गोविंद किसको कहते हैं, कुछ भी, और बीज मंत्र को भी कुछ नहीं जानता, किंतु कर रहा है। तो अभी देखो इसका इतना फल है। और मंत्र के भाव को समझ करके इष्ट देव को से संबंध ज्ञान रख करके अनर्थ रहित रह करके ये मंत्र होगा तो कितना फल देगा, खूब विश्वास के साथ में इसीलिए करो। ये सब कुछ इसी के द्वारा अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी। तो वो मंत्र देखते ही बड़ी इसको खुशी हुई और अधिक श्रद्धा के साथ में इस मंत्र को जपने लगा। एक दिन इतने में अब वो सोच रहा है जो मैं इनके समान ही संन्यास ले लूं और दंड लेकर के मैं ही सोहम सोहम करूं या क्या करूं सोच रहा है। और उनका इतना सम्मान दे करके और इनकी इतनी विद्वता दे करके हाँ को ना को हाँ कर रहे हैं, और मुक्ति को तो ऐसा समझते हैं जो मुक्ति हमारे हाथों में खेल रही है, मुट्ठी में है, ऐसे लोगों को समझा रहे हैं। अरे मुक्ति मुक्ति तो हम मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त हम हैं, हमारी सारी जी मुक्ति हो गई है, ऐसे माने करें माने तर्क के द्वारा विचार के द्वारा। इसने सोचा जैसे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसे ऐसा हो जाए। इतने में उसके मंत्र के जो देने वाली थी देवी जी कमाख्या और उनके साथ में काशी के जो ईश्वर हैं विश्वनाथ जी, दोनों वहाँ पर एकदम साक्षात रूप में स्वप्न में उनको दर्शन दिए। जल्दी भाग बेटा यहाँ से, जल्दी भागो, एक मिनट भी यहाँ मत रहो, जल्दी भागो और इस मंत्र को मत छोड़ना, और तुम्हारे इष्ट देव वही मदन गोपाल जी हैं, जल्दी से भागो यहाँ से नहीं तो तुम यहाँ इसमें डूब जाएगा, एक मिनट में मत रहो। और ये करके अंतर ध्यान हो गया, तेरा कल्याण होगा, तुम सीधा यहाँ से मथुरा होते हुए वृंदावन में जाओ, वहीं पर तुम्हारी इष्ट देव की प्राप्ति होगी। बस इतना कहने के साथ साथ में वो डर गया और काशी को छोड़ करके काशी के रास्ते 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 गंगा जी के किनारे किनारे प्रयाग में आया। यहाँ देखा जो जाड़े का दिन बड़े साधु संत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हजारों लाखों, और सब वहाँ पर त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं एक महीने का, त्याग और वैराग्य के साथ में बड़े बड़े खेमे साधु संतों के अखाड़े सब लगे हैं। वहाँ पर पहुँचे देखा जाए यहाँ पर भी दान पुण्य खूब चल रहा है, किंतु यहाँ दान पुण्य के इस रूप में नहीं, भगवत प्रसाद का वितरण इत्यादि कीर्तन हरि कथा इधर उधर में हो रही है। वहाँ रह करके प्रसाद भी पाने लगा कहते हैं, किंतु याद थी कि हमको जल्दी से जाना है वहाँ। अच्छा यहाँ पर गया, जा करके देखा जो लोगों की बड़ी भीड़ हो रही है, कहाँ पर बिंदु माधव बेणी माधव वो चतुर्भुज हैं किंतु श्याम रूप है उनका और शंख चक्र गदा पद्म उनका है। देखा जी रूप तो वैसा ही जैसे हमारे इष्ट देव का, किंतु चतुर्भुज रूप हैं और ये हैं कुछ प्रौढ़ या युवावस्था के, और हमारे इष्ट देव कैसे हैं बड़े किशोर बने बाल्य की पौगंडे के। अच्छा नहीं लगा, कुछ दिन वहां रहे, इसके बाद में फिर वहां से चले। अब वहां से सीधे जमुना जी का रास्ता पकड़ा और अपना मंत्र जपते जपते यहाँ पर आए मथुरा जी में। मथुरा पर जब आए तो विश्राम घाट में बड़ी भीड़ लग रही है और वहां पर देखा जो सभी लोग स्नान कर रहे हैं। बस वहां पर जाकर के स्नान किया और स्नान करके वहां पर विश्राम किया और यहाँ पर जो जो लीलाएं हुई उसका सब दर्शन किया स्थानों का, और फिर वहीं से प्रभु की कृपा से उसी के दिने धीरे धीरे वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर एक रोने की आवाज सुनाई पड़ी, बड़ी सुरीली कंठ से और बड़े आह के साथ में। ढूंढते 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 पता ही नहीं चले ये किधर। अंत में यमुना के किनारे केशी घाट के पास में एक कुंज से ये आवाज आई नीको में। फिर वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंच करके बड़े गंभीर होकर के उस कुंज में प्रवेश किया और देखा एक बाल गोपाल, बाल गोपाल माने गोप कुमार, गोप हाथ में लठिया वैसे ही, वेणु वैसे ही, वैसे कछनी वैसा ही वेश गोप का, और वहां पर बैठा हुआ ये रो रहा है, आंखों से आंसू तर हो रहे हैं, तरह तरह के भाव आ रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार उसके अंदर में देखा, देख करके और वहीं पर बैठ गया। प्रतीक्षा करने लगा कि इनको होश आया। थोड़ी देर के बाद में उनको होश हुआ। होश होने के बाद में उनके चरणों में इसने प्रणाम किया, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि तुम प्राग ज्योतिषपुर में आसाम में था आ तो हाँ, देवी जी ने कुछ मंत्र दिए तुमको आता दिया, तुम वहां से फिर महासागर होते हुए काशी और प्रयाग और मथुरा होकर के यहाँ आ रहा तो हाँ, आपने कैसे जान लिया, इनसे प्रश्न किया। देखा जैसे इनके ऊपर में अपश्रद्धा होने लगी, ये तो भूत भविष्यत वर्तमान और हृदय की भी बातें जानने वाले, इन पर श्रद्धा हुई। गुरु के पास में जाने से शास्त्रों की बातें, अपने अनुभव की बातें गुरु व्यक्त करता है जिससे लोगों को उसके प्रति विश्वास हो। ऐसा विश्वास नहीं हो तो गुरु करना न करना बराबर है, ऐसा विश्वास पक्का होना चाहिए। हमारा भव सागर को ये पार करा देंगे ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास का अतिरिक्त और क्या है। कृष्ण हैं, परम तत्व हैं, शास्त्रों में कहा, गुरुजन ने कहा, किंतु हमारा विश्वास नहीं है तो क्या कुछ होगा। इसलिए ये अवांग वंश गोचर बातें हैं, भगवान का विषय आत्मा की बातें, इसलिए इस पर विश्वास होना जरूरी है। इसी विश्वास को, दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, यहीं से भक्ति आरंभ होती है। और यदि दृढ़ विश्वास नहीं हुआ, हम जो कह रहे हैं हमारे ऊपर में विश्वास, ये ऐसे ही कहते हैं लोग हैं, हमारी दुर्गा जी को हम छोड़ कैसे सकते हैं, हमारे गणेश जी को कैसे छोड़ सकते हैं, ये कभी हो नहीं सकता। आज जिसको विश्वास है उसको एक मिनट में कहा, एक मिनट में सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की एकांतिक भक्ति में आ जाएगा। इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि श्रद्धा किस प्रकार से उनकी हमारे प्रति उत्पन्न हो, जिससे कि इनको भगवान के तरफ में मैं चालित कर सकूं, इनको जो कहूं ये माने। और यदि श्रद्धा ही नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने उनको बताया और उसको बड़ी श्रद्धा हो गई। अच्छा ये क्यों हुआ, एक तो मंत्र जप, देवी जी की कृपा, और बीच बीच में भक्तों का संग, जैसे प्रयाग में मथुरा में उसकी श्रद्धा कुछ पुष्ट होती गई, और वृंदावन में भगवान जी के साथ में, गुरु जी के साथ में उसका भेंट हुआ। इसके बाद में उन्होंने साध्य और साधन के लिए प्रश्न किया, हमारा साधन क्या है, साध्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और उसके लिए साधन क्या है। अभी हमारा साधन साध्य है पैसा, चाहे अभी हम त्यागी हों चाहे गृहस्थ हों, अधिकांश लोग हम में से हैं किसी न किसी रूप में पैसा, इसको छोड़ नहीं पाएंगे। किसी न किसी रूप में जीव के साथ में अभिन्न अंग में, भाई पैसा नहीं रहेगा तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे, मंदिर कैसे बनेगा, वैष्णव को खिलाएंगे कैसे, जीवन धारण करेंगे कैसे। इसलिए अभी वही है, तो ये है साध्य और साधन क्या हुआ, नौकरी चाकरी भीख मांगना। बंबई में सेक्टर बटे हुए हैं भीख मंगो के, और ठीका पर उठता है वो
दिल्ली में,
हाँ बंबई में तो है ऐसा, ठीका उठ जाता है। ये इतना भाग 1 लाख रुपए में ये ठीका उठाया, भिखारी ये कोई ले लिया। हाँ हाँ बिकता है वो, बिकता है उनमें वो विभाग बिकता है ने? उसमें दूसरा कोई भिखारी नहीं जा सकता, और पुलिस से उनकी साठ गांठ होती है, उनका वो राज्य रहता है। जैसे साधुओं का बटा हुआ है भाग ना, ये दिल्ली का ये भाग गौड़िया मठ का है, ये उनका है वो उनका है, इसमें दूसरे नहीं है। मथुरा में ये हम लोगों का दूसरा है, आएगा ना भीख मांग ले जाएगा यहाँ से, तो हम लोगों को कष्ट होगा कि नहीं। हाँ हाँ होता है, जैसे देखो वहाँ से आया और यहाँ से भीख मांग करके लेकर के चला गया, तो हम लोगों को कष्ट हो जाए भाई ऐसा उपाय करना है जो यहाँ ना आने पाए। और इन लोगों से कहते हैं देखो वो गौड़िया मठ का नाम करके आता है ना, तो उसको आटा मांगे तो दे देना, किंतु पैसा टैसा सब हमारे पास में ले आए। नहीं हाँ 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 वो होता है ऐसा, कहूँ चाहे ना हो, ये जगत ही ऐसा है। तो ये साधन मैं कह रहा हूँ, परमार्थ की बात नहीं, साधन। पैसा रुपया अर्थ जहाँ पर हमारे जीवन का प्रधान उद्देश्य है, वहाँ पर साधन क्या है, वाणिज्य व्यवसाय खेती बाड़ी, झूठ ठगी करना और नौकरी करना चाकरी करना भीख मांगना, ये सब पैसे के लिए। इसी तरह से जब मुक्ति उद्देश्य होता है तो उसका साधन क्या होगा, ज्ञान। भक्ति यदि उद्देश्य है जीवन का तो उसके लिए श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरण। यदि ब्रजलोक हमारा उद्देश्य है तो हमारा क्या होगा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, किंतु ब्रज का भाव लेकर अनुगत्य में, वैसे लोग रागानुगा भक्ति, उसमें भी पांचों में से जिसका जो विशेष भाव है उसके लिए वो विशेष साधन। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छा तो देखो मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, तुमको वेद में भी ये बातें हैं, शास्त्रों में भागवत में इसका वर्णन किया गया है, गीता में भी साध्य और साधन बतलाया गया। गीता में साध्य क्या है, सर्वधर्मान प्रत्यज्यमाम एकम शरणम ब्रज, ये जो शरण है भगवान का यही साध्य है। और साधन क्या है, कोई शरणागति होकर के भगवान का नाम स्मरण इत्यादि, ये सब है। इसी तरह से भागवत इत्यादि है, भागवत में भी बतलाया गया, वेदों में बतलाया गया, भागवत में बतलाया क्या गया, भक्ति बतलाया गया, प्रेमा भक्ति बतलाया गया। किंतु मैं तुमको ये सब नहीं बतलाऊंगा क्योंकि तुम्हारी इसमें रुचि नहीं होगी, मैं अपने जो अनुभव इस जीवन में मैंने किया है वही जीवन का उपाख्यान तुमको बतलाऊंगा और तुम इसे सहज ही सीख सकोगे। इसलिए गुरु साधक को अपने जीवन में जो साधन करता है और उस साध्य को पाता है, अपनी अनुभूति को यदि शिष्य को बतलाए तो वो झट पा ले। और जिस गुरु ने कोई साधन ही नहीं किया और साध्य ही नहीं उसका है, वो क्या देगा, वो नहीं दे सकता। इसलिए हम लोगों को भी ऐसे ही गुरु को करना चाहिए जिनका कोई एक मुख्य साध्य है और उसके लिए साधन करके उसको पाया है, अथवा नहीं भी पाया है तो उसकी गुरु परंपरा ने पाया है, तथा ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहना आरंभ किया, जे देखो मैं अपने जीवन की एक बीती हुई आप बीती हुई अनुभव युक्त साध्य साधन संबंधी जो यह है उपाख्यान में तुमको बतला रहा हूं। कितना बजा भाई,
7
बज गया है। ये कह करके अपनी कथा आत्मकथा कहानी आरंभ की। देखो मेरा जन्म गोवर्धन में हुआ था, गोप कुमार से अपनी कहानी आ। ये गोप कुमार जी कौन है, गोप कुमार कौन है, यही स्वरूप है ना, यही स्वरूप जी
श्री राम के वंशज
हैं,
श्री राम भैया के वंशज।
तो ये गोवर्धन में उनका जन्म हुआ और गोवर्धन कुल में ही हुआ, गोप कुल में। और मैं बचपन से अपने माता पिता के पास में रहता, दूध खूब पीता गायों का। और जब मैं बड़ा थोड़ा हुआ तो गायों को चराने के लिए स्कूल कॉलेज और ये सब में नहीं गया। वही बेस जो अभी देख रहे हैं यही हमारा बेस था, इसी बेस में गायों को चराने जाया करता। तो चराते चराते मैं एक दिन चरा रहा था गायों को, देखा एक साधु बैठे हैं और वो उनके नाक से लाला गिर रहा, मुख से फेन गिर रहा, और कभी कभी लोम एकदम उठ जाते हैं, रोमांच हो जाता है, कभी कांपने लगते हैं, कभी जोर से रोने लगते हैं और कभी हंसते हैं, कभी न जाने क्या करते हैं, कभी रोते हैं और कभी लोट पोट करने लगते हैं। मेरा आकर्षण इनके प्रति हो गया। मैं क्या करता, घर से मैया से कह करके थोड़ा सा दूध इनके लिए लिया, बड़े प्रसन्न होकर के। कभी होश में रहते तो, और होश में नहीं रहते तो उन्हीं की कुटिया के पास में रख देते और मैं आने जा। उनका स्वभाव की प्रीति हमारे प्रति अप्रीति हो गई। एक दिन उन्होंने मेरे ऊपर में प्रसन्न होकर के कहा, बेटा एक बात करो, जमुना जी में स्नान कराओ। पासी जो जमुना जी बह रही थी, मैं स्नान करके आया और तुमको जो जो देवी जी ने मंत्र दिया है दशाक्षर मंत्र, वही हमारे कानों में, और देते ही विकल होकर के वहीं पर रो करके और मूर्छित होकर के गिर पड़े। उन्होंने ये नहीं बतलाया कि ये मंत्र कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, सवेरे शाम दोपहर को करना चाहिए, कोई विधि नहीं, कोई कुछ नहीं, और बस मूर्छित हो। मैं जमुना की तरफ मैं दौड़ा पानी लाने के लिए, पानी लेकर के इन कपड़ों को भिजा करके और इनके मुख पर डालूंगा जैसे कि ये होश में आए। और जब तक मैं वहाँ से आया, थोड़ी देर में देखा जैसे न जाने किधर चले गए। खोजते 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 मैं हार गया, कहीं नहीं मिले। मैं बहुत चिंतित हो गया। मैं घर तो लौटा, किंतु अब घर लौटने का मेरा वो जो भाव था वो खत्म हो गया। मुझसे घर में रहा नहीं, बस उन्हीं की चिंता आती, और जो मंत्र बतलाया था वो मैं जपने लगा। कोई तत्व ज्ञान नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कुछ भी नहीं जानता था। अब मुझसे घर से रहा नहीं गया। मैं घर से और जिधर पैर निचला उधर ही को चल पड़ा। आज यहीं तक रहे बस, आप उनको चलने दीजिए, कहाँ तक जाते हैं आप उनके पीछे पीछे चलिए। पंचाकल्प करु भैस्य लीजिए। नन्नू मल जी एक सुनाइए।